नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द पाथ टू सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर, आर्टियोम डैशिंस्की की करियर विकास केंद्रित व्यावहारिक पुस्तक है। इसका विषय यूएक्स और प्रोडक्ट डिजाइन में जूनियर या मिड लेवल स्तर से सीनियर जिम्मेदारियों तक पहुंचना है। यह केवल बेहतर स्क्रीन, प्रोटोटाइप या डिजाइन टूल सीखने की गाइड नहीं है। पुस्तक का केंद्रीय तर्क है कि पदोन्नति के लिए डिजाइनर की प्रभावशीलता, संवाद, सहयोग और संगठनात्मक योगदान उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उसकी शिल्पगत क्षमता। लेखक विभिन्न कंपनियों में डिजाइनर मूल्यांकन के तरीकों से प्रेरित एक ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक अपनी वर्तमान क्षमता और अगले स्तर की अपेक्षाओं के बीच अंतर पहचान सके। इसमें करियर लक्ष्य तय करने, अलग अलग डिजाइन करियर पथों को समझने, काम का प्रभाव दिखाने, हितधारकों के साथ काम करने और टीम प्रक्रियाएं बेहतर बनाने जैसे विषय आते हैं। इसका उद्देश्य किसी एक आदर्श करियर का दावा करना नहीं, बल्कि डिजाइनर को अपनी स्थिति का यथार्थवादी आकलन करके ठोस विकास योजना बनाने में सहायता देना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वरिष्ठता को केवल डिजाइन कौशल नहीं, व्यापक पेशेवर क्षमता के रूप में देखना। पुस्तक का सबसे उपयोगी आधार यह है कि सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर की भूमिका को केवल सुंदर इंटरफेस या किसी टूल की तेज जानकारी से नहीं मापा जा सकता। डैशिंस्की के अनुसार, अगला स्तर उस व्यक्ति का होता है जो अस्पष्ट समस्या को समझ सके, समाधान का तर्क स्पष्ट कर सके, अन्य लोगों के काम को बेहतर बना सके और उत्पाद के परिणामों पर असर डाल सके। इसलिए पुस्तक हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी क्षमताओं के रूप में रखती है। उदाहरण के लिए, अच्छा समाधान बनाना पर्याप्त नहीं है यदि डिजाइनर उसे उत्पाद, इंजीनियरिंग या व्यवसाय पक्ष के लोगों तक विश्वसनीय ढंग से समझा नहीं सकता। इसी तरह, बैठक में प्रभावी ढंग से बोलना भी तब सीमित है जब उसके पीछे उपयोगकर्ता, समस्या और डिजाइन निर्णयों की स्पष्ट समझ न हो। यह दृष्टि पदोन्नति की एक आम गलतफहमी को ठीक करती है, जिसमें लोग अधिक जिम्मेदारी को केवल अधिक जटिल स्क्रीन बनाने के बराबर मान लेते हैं। पुस्तक पाठक को यह देखने के लिए कहती है कि उसके काम की गुणवत्ता, सहयोग की गुणवत्ता और प्रभाव की गुणवत्ता, तीनों में कौन सी कमी है। इस तरह विकास का लक्ष्य अस्पष्ट आत्म सुधार में ही रहता, बल्कि भूमिका की वास्तविक अपेक्षाओं से जुड़ जाता है। दूसरा, स्वमूल्यांकन से व्यक्तिगत विकास योजना बनाने की प्रक्रिया। किताब का व्यावहारिक केंद्र स्वमूल्यांकन है। करियर में आगे बढ़ने की इच्छा तब कम उपयोगी रहती है जब व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह अभी किस स्तर पर है, उससे आगे की भूमिका में क्या अपेक्षित है और दोनों के बीच वास्तविक अंतर क्या है। डैशिंस्की पाठक को अपनी क्षमताओं, उपलब्धियों और काम करने के तरीकों का संरचित आकलन करने की दिशा देते हैं। इसका अर्थ केवल कमजोरियों की सूची बनाना नहीं है, इसमें यह पहचानना भी शामिल है कि कौन सी क्षमता पहले से मजबूत है, किस कौशल का असर सबसे अधिक होगा और किन क्षेत्रों में प्रमाणित अनुभव की जरूरत है। उदाहरण के लिए, किसी डिजाइनर को शोध, विजुअल डिजाइन या प्रोटोटाइपिंग में आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन उसे निर्णयों को प्रस्तुत करने, फीडबैक देने या परियोजना की दिशा प्रभावित करने में अनुभव कम हो। ऐसी स्थिति में हर चीज एक साथ सीखने के बजाय प्राथमिकता तय की जा सकती है। पुस्तक विकास योजना को भूमिका, समय और काम के अवसरों से जोड़ने का संकेत देती है। इससे सीखना किसी अलग पाठ्यक्रम की तरह नहीं, रोजमर्रा की परियोजनाओं में लागू होने वाली गतिविधि बनता है। यह ढांचा मैनेजर के साथ करियर बातचीत को भी अधिक ठोस बना सकता है, क्योंकि चर्चा केवल पदनाम की मांग नहीं रहती, बल्कि अगली भूमिका के लिए दिखाए जाने वाले व्यवहार और परिणामों पर केंद्रित होती है। तीसरा, करियर पथ चुनने में व्यक्तिगत योगदान और प्रबंधन की स्पष्टता। डिजाइन करियर में आगे बढ़ने का अर्थ अनिवार्य रूप से लोगों का मैनेजर बनना नहीं है। पुस्तक अलग अलग करियर दिशाओं पर विचार करने और पाठक को अपनी रुचि, ताकत तथा कार्य संदर्भ के अनुरूप पद चुनने के लिए प्रेरित करती है। यह विशेष रूप से उन डिजाइनरों के लिए महत्वपूर्ण है जो नेतृत्व की जिम्मेदारी चाहते हैं, लेकिन हाथों से डिजाइन समस्याओं पर काम करना भी जारी रखना चाहते हैं। वरिष्ठ व्यक्तिगत योगदानकर्ता की भूमिका में प्रभाव अक्सर कठिन समस्याओं को सुलझाने, निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाने, मानक स्थापित करने और दूसरों को सक्षम बनाने से आता है। इसके विपरीत, प्रबंधन में लोगों के विकास, प्राथमिकताओं, टीम संरचना और संचालन पर अधिक ध्यान हो सकता है। दोनों दिशाओं में संवाद और नेतृत्व की जरूरत रहती है, पर योगदान की प्रकृति अलग होती है। पुस्तक का मूल्य इस बात में है कि वह पदनाम को लक्ष्य मानने के बजाय भूमिका के काम और अपेक्षाओं पर सोचने को कहती है। हर कंपनी में सीनियर डिजाइनर का दायरा एक जैसा नहीं होता, इसलिए बाहरी शीर्षक की नकल करना पर्याप्त नहीं है। पाठक को अपने संगठन में अगले स्तर की परिभाषा समझनी चाहिए और देखना चाहिए कि वह किस प्रकार का प्रभाव लगातार पैदा करना चाहता है। यह स्पष्टता गलत दिशा में कौशल निवेश और अनचाहे करियर बदलाव की संभावना घटाती है। चौथा, डिजाइन प्रस्तुत करना और हितधारकों को निर्णय प्रक्रिया में साथ लाना। सीनियर स्तर पर डिजाइन की प्रस्तुति सजावटी स्लाइडों का काम नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। पुस्तक में डिजाइन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और हितधारकों के साथ काम करने पर जोर है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि डिजाइनर केवल अंतिम स्क्रीन ना दिखाए बल्कि समस्या, उपयोगकर्ता की जरूरत, विकल्पों, सीमाओं और प्रस्तावित समाधान के पीछे के तर्क को भी स्पष्ट करे। जब यह संदर्भ अनुपस्थित रहता है तो समीक्षा अक्सर निजी पसंदों पर अटक जाती है। संदर्भ स्पष्ट होने पर बातचीत उपयोगकर्ता, लक्ष्य और प्रमाण के आधार पर आगे बढ़ सकती है। हितधारक प्रबंधन का अर्थ हर राय से सहमत होना भी नहीं है। अधिक उपयोगी तरीका यह है कि शुरुआत में अपेक्षाएं समझी जाए, असहमति के कारण सुने जाए, सही निर्णयकर्ता पहचाने जाए और महत्वपूर्ण फैसलों को समय पर साझा किया जाए। यह प्रक्रिया डिजाइनर को रक्षात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सहयोगी ढंग से प्रभाव डालने में मदद करती है। सीनियर डिजाइनर अक्सर उत्पाद, इंजीनियरिंग और व्यवसाय के बीच अनुवादक की भूमिका निभाता है। उसे डिजाइन की गुणवत्ता बचाते हुए तकनीकी व्यवहार्यता, समय और उत्पाद लक्ष्य भी समझने पड़ते हैं। पुस्तक इसी कारण संवाद को अलग सॉफ्ट स्किल नहीं, डिजाइन प्रभावशीलता की आवश्यक शर्त के रूप में रखती है। अंत में टीम प्रक्रियाओं, फीडबैक और मेंटरिंग से व्यक्तिगत काम से आगे प्रभाव बढ़ाना। पुस्तक के अनुसार वरिष्ठता का एक संकेत यह है कि डिजाइनर का प्रभाव केवल उसकी अपनी परियोजनाओं तक सीमित ना रहे। टीम की प्रक्रियाओं में सुधार, उपयोगी फीडबैक और साथियों को सहयोग देना ऐसे तरीके हैं जिनसे व्यक्ति व्यापक योगदान दिखा सकता है। प्रक्रिया सुधार का मतलब अनावश्यक नियम या अधिक बैठके बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य उन दोहराई जाने वाली बाधाओं को पहचानना है जो टीम की गति या निर्णयों की गुणवत्ता घटाती हैं, जैसे अस्पष्ट समीक्षा, देर से मिलने वाला फीडबैक या जिम्मेदारियों का भ्रम। डिजाइनर यदि समस्या को स्पष्ट कर सके और छोटा व्यवहार्य सुधार प्रस्तावित कर सके तो उसका प्रभाव व्यक्तिगत निष्पादन से आगे जाता है। फीडबैक में भी केवल पसंद या नापसंद बताना पर्याप्त नहीं है। उपयोगी फीडबैक समस्या, अपेक्षित परिणाम और सुधार की दिशा से जुड़ा होता है ताकि सामने वाला व्यक्ति उसे लागू कर सके। मेंटरिंग का अर्थ औपचारिक प्रबंधकीय भूमिका लेना जरूरी नहीं है। किसी जूनियर सहयोगी को काम का संदर्भ समझाना, निर्णय पर विचार करने में मदद करना या प्रस्तुति की तैयारी कराना भी क्षमता वृद्धि है। ये गतिविधियां सीनियर डिजाइनर की उस योग्यता को प्रदर्शित करती है जिसमें वह टीम को मजबूत बनाता है, न कि केवल व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट परिणाम देता है। निष्कर्ष में, द पाथ टू सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर उन UX और प्रोडक्ट डिजाइनरों के लिए सबसे उपयोगी है जो आरंभिक कौशल सीखने के चरण से आगे निकल चुके हैं और अपनी अगली भूमिका के लिए स्पष्ट दिशा चाहते हैं। जूनियर डिजाइनर इसे जल्दी पढ़कर उन क्षमताओं को समझ सकते हैं जिन पर समय के साथ काम करना होगा। मिड लेवल डिजाइनर इसके प्रमुख पाठक है क्योंकि उनके लिए स्वमूल्यांकन, कौशल अंतर और पदोन्नति के प्रमाण सबसे तात्कालिक प्रश्न होते हैं। सीनियर डिजाइनर भी इसे अपनी कार्यशैली, प्रभाव और आगे के व्यक्तिगत योगदानकर्ता पद पर विचार करने के साधन की तरह उपयोग कर सकते हैं। यह पुस्तक उन मैनेजरों के लिए भी प्रासंगिक हो सकती है जो डिजाइनरों के विकास पर अधिक ठोस बातचीत करना चाहते हैं। इसकी विशिष्टता यह है कि यह पोर्टफोलियो बनाने, नौकरी साक्षात्कार या किसी एक डिजाइन विधि पर केंद्रित पुस्तक नहीं है। यह करियर प्रगति को रोज के काम में दिखने वाले व्यवहारों से जोड़ती है, जैसे निर्णय समझाना, हितधारकों के साथ सहयोग, फीडबैक और प्रक्रिया सुधार। इसी कारण इसका लाभ केवल नई नौकरी खोजने तक सीमित नहीं रहता। पाठक अपनी वर्तमान टीम में अधिक प्रभावी योगदान के अवसर भी पहचान सकता है। फिर भी पुस्तक को किसी निश्चित पदोन्नति के वादे के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि कंपनियों की संरचनाएं और स्तर अलग होते हैं। इसकी वास्तविक ताकत एक अनुकूलनीय ढांचा देना है जिससे डिजाइनर अपनी संस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास योजना बना सके। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं RTM दाशिंस्की, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।